नमस्कार भारत, 5 जून मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। सदी के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ग्वाटेमाला में 62 लोगों की मौत, दर्जनों अभी भी लापता। तेज हुई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग, संजय राउत ने सहयोगी पार्टी बीजेपी को बताया शिवसेना के लिए खतरा।
हम सरकार में है इसका मतलब हम गुलाम नहीं है ना किसी के। जब से 2014 में बीजेपी सत्ता पे आई है भारी बहुमत से, तो उनको लगता है कि आप बीजेपी को किसी मित्र पार्टी की जरूरत नहीं है।
जानेंगे श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के बारे में, जहां होती है सबसे ज्यादा पत्थरबाजी।
स्टोन पेल्टिंग पूरी वैली में हो रही है, मगर जितनी खतरनाक स्टोन पेल्टिंग नौहट्टा में हो रही है, जामिया मस्जिद एरिया में, मुझे लग रहा है कि उतनी खतरनाक स्टोन पेल्टिंग कहीं नहीं हो रही है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। ग्वाटेमाला में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अभी तक कम से कम 62 लोगों के मारे जाने की सूचना है। देश के आपदा विभाग के अनुसार बचाव कर्मियों ने नजदीकी गांवों से कई शव बरामद किए हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी की चपेट में आने से दर्जनों लोग अभी लापता हैं। इसके अलावा 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने इस आपदा के बाद 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप और इससे जुड़े अन्य मामलों की जांच को लेकर उन्हें खुद को क्षमादान देने का संपूर्ण अधिकार है। हालांकि ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने वही बात दोहराई है जो उनके वकीलों ने जाँच का नेतृत्व कर रहे स्पेशल काउंसिल को जनवरी में दिए अपने ज्ञापन में कही थी। जॉर्डन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो शहर में रैलियां जारी रहेंगी। जॉर्डन में प्रदर्शनकारी सामानों की कीमतें बढ़ने और टैक्स की दरों में हुई वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। इस बीच जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफदी ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी सरकार लोगों की मांगों का सम्मान करती है। विदेश मंत्री ने कहा,
I think we need to move on multiple fronts. We need to respect the demands of the people and the fact that.
मुझे लगता है कि हमें अलग-अलग मोर्चों पर कदम उठाने की जरूरत है। हम लोगों की मांगों का सम्मान करते हैं। जिस लोकतांत्रिक और सभ्य तरीके से वे प्रदर्शन कर रहे हैं, वह हमारे समाज के लिए एक गर्व की बात है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये थे जॉर्डन के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में इस्लामिक स्टेट सेल की पहली कथित महिला सदस्य ने इस बात पर अफसोस जताया है कि उन्होंने लंदन में चरमपंथी हमले की साजिश में हिस्सा लिया था। 18 वर्षीय इस महिला का नाम सफा बोलर है और उन्हें चरमपंथी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए सीरिया जाने की कोशिशों के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनकी बहन और माँ पहले ही चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार कर चुकी हैं। स्कॉटलैंड यार्ड में चरमपंथ विरोधी कमांड के प्रमुख कमांडर डीन हेडन ने इस संबंध में कहा,
Safra at the time when the investigation started was 16 years old. She's now 18.
जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो सफा उस समय 16 साल की थी। अब वे 18 साल की हो गई हैं। हालांकि अपनी उम्र के हिसाब से वे काफी परिपक्व हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वे काफी चालाक भी हैं। उन्होंने एक खुफिया फोन अपने पास रखा हुआ था जिसके जरिए वे सीरिया से मिलने वाले निर्देश प्राप्त करती थी। ये थे स्कॉटलैंड यार्ड में चरमपंथ विरोधी कमांडर के प्रमुख के शब्द। मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने घोषणा की है कि वे उस सॉफ्टवेयर को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए फेसबुक खुद ब खुद उनके वेब यूजर्स को ट्रैक कर लेता है। एप्पल के सॉफ्टवेयर प्रमुख क्रेग फेडरिगी ने कहा कि उनका वेब ब्राउजर सफारी आने वाले वक्त में सोशल नेटवर्क साइट से उनकी गतिविधियों को जांचने से पहले यूजर की अनुमति लेगा। इस कदम के बाद फेसबुक और एप्पल के बीच तनाव गहराने की संभावना है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान आज संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी को इस बारे में सूचित करेगा कि उसने अपनी यूरेनियम क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि वे इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को एक पत्र भेजेंगे। अमरीका की खुफिया रक्षा एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रॉन रॉकवेल हैंसन पर आरोप है कि वे अमरीका में होने वाले खुफिया सम्मेलनों में शामिल होते थे और चीन के पास उसकी सूचनाएं पहुंचाते थे। कॉफ़ी की जानी मानी कंपनी स्टारबक्स को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने वाले व्यापारी हॉवर्ड सुल्ट्ज़ ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। जब उन्होंने कंपनी 1982 में शामिल हुए थे तब स्टारबक्स के सिर्फ 11 स्टोर्स थे, आज उसके 77,000 से अधिक स्टोर्स हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। मध्य अमेरिका में मेक्सिको के दक्षिण में स्थित देश ग्वाटेमाला में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अभी तक कम से कम 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। देश की आपदा विभाग के मुताबिक फ्योगो ज्वालामुखी के करीबी गांव से कई शव बरामद किए गए हैं, लेकिन दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। वहां के ताज़ा हालात को लेकर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं नवीन नेगी।
ग्वाटेमाला में रविवार को हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चारों ओर सिर्फ राख के बादल देखने को मिल रहे हैं। पूरे इलाके में दिन के वक्त ही रात सा मंजर हो चला है। फ्योगो ज्वालामुखी के फटने की वजह से अभी तक लगभग 62 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्वाटेमाला से प्राप्त हो रही तस्वीरों और वीडियो में कई किलोमीटर तक हवा में राख उड़ती हुई देखी जा सकती है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस ज्वालामुखी के चलते करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ज्वालामुखी के फटने से उससे निकलने वाला लावा बहते हुए नज़दीकी गांवों तक पहुंच गया है। इस वजह से घरों में रह रहे लोग झुलस गए हैं। ज्वालामुखी के कहर से प्रभावित ऐसी ही एक ग्रामीण महिला यूगेनिया गार्सिया उस्पातान ने बताया कि वे उस समय बाजार में थीं जब लावा बहते हुए उनके घर तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा, मैं घर के बाहर नज़दीक की दुकान में कुछ सामान खरीदने गई थी, जब मुझे एहसास हुआ कि लावा बहते हुए नीचे आ रहा है और हमारे खेतों से होते हुए हाईवे और पानी की टंकी तक जा पहुंचा है। वह बिल्कुल हमारे नज़दीक पहुंच गया था। हम किसी तरह खुद को बचा पाने में कामयाब रहे। पिछली रात मैं अपने 2 बच्चों को किसी तरह अपने साथ बचा सकी, लेकिन मेरी 2 बेटियाँ, पोता और मेरा बेटा अभी भी लापता हैं। ये थे लावा से प्रभावित एक ग्रामीण महिला के शब्द। ग्वाटेमाला सिटी का एयरपोर्ट इस ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति जिमी मॉरेल्स ने राष्ट्रीय आपातकालीन सेवाओं को राहत कार्य के लिए ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति जिमी मॉरेल्स ने कहा, हम इस समय राज्य के आपदा विभाग को ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश देते हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे ज़रिए इस आपदा से निपटने के लिए और क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे विचार से कम 3 इलाकों में ज्वालामुखी ने विनाश किया है। ये थे ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के शब्द। स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार साल 1974 के बाद से ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। कई वीडियो में लावा के ऊपर तैरती हुई लाशें दिख रही हैं। ग्वाटेमाला क्षेत्र में राख से बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है और सभी ज़रूरी सुरक्षा अपनाने को कहा है। सेना के जवान आपदा कार्यों में लगे हैं और लोगों के लिए अस्थायी कैंपों का निर्माण कर रहे हैं।
ग्वाटेमाला में 30 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 4 सक्रिय हैं। अब रुख करते हैं भारत का। महाराष्ट्र और केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की साझेदार शिवसेना लगातार भाजपा पर जुबानी हमले बोल रही है। पार्टी नेता संजय राउत ने हाल ही में कहा कि बीजेपी शिवसेना के अस्तित्व के लिए खतरा है। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने संजय राउत से बात की और पूछा कि भाजपा के साथ आपकी कड़वाहट बढ़ने की वजह आखिर क्या है।
हम लोग खिलाफ कहां बोल रहे हैं? हम जो है, देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से 2014 में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में और दिल्ली में आई है, तब से जो कुछ बातें हैं जो हमें देश के बारे में, सरकार के बारे में ठीक नहीं लगती, वो हम बेबाक तरीके से बोलते हैं। हमारा एक क्या बोलते हैं, हमारा शिवसेना का स्वभाव कैरेक्टर है कि हम मन ही मन में दबा कर नहीं बैठते हैं। अंदर ही अंदर जो हमको ठीक नहीं लगता वो ठीक नहीं लगता है, जो हमें ठीक लगता है वो ठीक लगता है।
क्या आप दोहराएंगे आपको क्या ठीक नहीं लगता है?
बहुत सी बातें हैं, जैसे कि देखिए कि नोटबंदी का विषय रहा, हमेशा नोटबंदी रहा। शिवसेना ये बात सबसे पहले उठाई थी कि नोटबंदी देश हित और जनता हित में नहीं है। आज जो बात हम 2 साल पहले कह देते थे, वो या चंद्रा बाबू बोलता है, यही बात आज नीतीश कुमार बोलने लगा है, यही बात आज दबे आवाज में बीजेपी के नेता बोलने लगे है। ऐसी बहुत सी बातें, कश्मीर का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सभी मामले में देखिए हम सरकार में है, इसका मतलब हम गुलाम नहीं है ना किसी के। सरकार में रहने का मतलब भी नहीं होता कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाइए,
गठबंधन सहयोगी आपके हैं, और जब इस इतने तीखे बयान आपके आते हैं तो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो क्या अब आगे का रास्ता आपका क्या है? आप अहम सहयोगी है, आगे दो बड़े चुनाव आने हैं।
अभी हम अहम सहयोगी नहीं है, जब से 2014 में बीजेपी सत्ता पे आई है भारी बहुमत से, तो उनको लगता है कि आप बीजेपी को किसी अलायंस की या किसी मित्र पार्टी की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि वो 2019 में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता पे आएगी। अगर वो अपने ताकत पर इंडिपेंडेंटली 400 सीट जीतने की बात करते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि उनको अलायंस या गठबंधन में किसी की जरूरत नहीं है।
ये क्यों बात आती है कि शिवसेना हमेशा बीजेपी का हाथ पकड़े रहती है? क्या शिवसेना बहुत कमजोर स्थिति में है आज?
नहीं, बात देखिए कि हमने 2019 का ऐलान किया है, या हम 2019 के जो सभी चुनाव है वो हम बीजेपी के सिवा इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या हमने बात तय किया है। ये पार्टी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निर्णय हुआ है, जो हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया है। देखिए, जैसे महाराष्ट्र में जो दो बाई इलेक्शन हो गए अभी लोकसभा के, वो तो हम शिवसेना बीजेपी अलग अलग लड़े हैं,
लेकिन सरकारों में आप दोनों जगह शामिल हैं।
देखिए, सरकार में कभी कभी रहना मजबूरी होती है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेट और नेशन की स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी मजबूरी होती है कि हमको एक साथ रहना पड़ता है, नहीं तो देश अस्थिर हो जाएगा।
जब दो लोगों के बीच में तकरार हो रही होती है तो कहीं ना कहीं उसका एक मकसद ये भी होता है कि वो एक सहमति तक पहुंचे, तो बीजेपी से आपकी क्या शिकायतें हैं जो आप चाहेंगे कि दूर हो जाए तो बात फिर से जो है पहले जैसी हो जाए?
जब हमको शिकायत करनी थी तो हम बहुत शिकायत कर चुके हैं 2 साल में। अगर शिकायत सुनने के लिए किसी को टाइम नहीं है, और उनको शिवसेना जो 25 साल उनके साथ रही, उनके बुरे दिनों के साथ ही रही हमेशा, तब शिवसेना की बात सुनने को मानने को अगर वो तैयार नहीं है, शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारी कोई शिकायत नहीं है।
धीरे धीरे सब दल जो है बीजेपी का जो गठबंधन है उससे अलग हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है 2019 में चीजें 2014 का जो चुनाव था उससे काफी अलग होंगी?
बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, बीजेपी के 110 या 120 तक लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी
और आप भी अलग लड़ेंगे, तो ऐसे में जो विपक्ष है वो फिर एकजुट हो रहा है, तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी जो आप मुझे बता रहे हैं उस लिहाज से?
हम उस वक्त निर्णय लेंगे।
आप सुन रहे थे शिवसेना नेता संजय राउत को। ये तो हुई शिवसेना की बात, अपनी सहयोगी पार्टी के ऐसे रवैये पर बीजेपी का क्या रुख है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय से बात की। सुने क्या कहना था उनका।
हमारे उसमें यही है कि बीजेपी के सारे नेताओं ने ये कहा है कि बीजेपी अलायंस के पक्ष में है, लेकिन अलायंस दोनों पार्टी की तरफ से होना चाहिए। अगर दोनों पार्टी को अलायंस हो तो दोनों पार्टी तैयार हो तभी अलायंस होता है, और बीजेपी एक व्यापक हिंदुत्व के मुद्दों पर अलायंस चाहती है और वो हमारे साथ करना चाहते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है।
कई तरीके से आपकी पार्टी की खुली आलोचना की जाती है, पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाया जाता है, तो जब जो पार्टी गठबंधन में आपके साथ हो वो उसका आपकी पार्टी की छवि पर जो असर पड़ रहा है उससे आप निबट कैसे रहे?
हमारी पार्टी की छवि पे सवाल नहीं, सवाल फिर जो सरकार में रहते हैं और फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं उनका क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम अपने कार्यक्रम लेके जनता तक जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे साथ रहेगी।
पहले मैं संजय जी से बात कर रहा था, यही सवाल मैंने उनका किया, तो उनका ये कहना था कि ये हमारी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं और राजनीति में करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी जो 2019 की बीजेपी है वो बीजेपी नहीं है जो 2014 की थी या उससे पहले की थी।
उनकी राय है, भारतीय जनता पार्टी वही है जो अपने विचारों से सालों से काम कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी है जो कल थी आज वही भारतीय जनता पार्टी है। लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। इसमें किसी को अगर पत्ती तो मैं उसमें कुछ बात नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है और अपने मुद्दों के आधार पे, विकास के एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
क्या आपकी पार्टी की ओर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से शिवसेना के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं?
हमने अलायंस की बात तो पहले से की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम चाहते हैं, हमारे महाराष्ट्र के नेताओं ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई अलायंस के पक्ष में हम है ही। अभी जब इलेक्शन के समय आएगा अब देखेंगे क्या होता है एक्चुअल पोजीशन।
और पिछले कुछ समय से दोनों पार्टियों के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। आज है 5 जून, दिन मंगलवार, और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत आदर्श राठौर के साथ। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर के नौहट्टा इलाके की, जहां पर बीते शुक्रवार को सीआरपीएफ की एक जिप्सी ने 3 लोगों को कुचल दिया था। इनमें से 21 वर्ष के कैसर अहमद भट्ट की शुक्रवार देर रात अस्पताल में मौत हो गई थी। श्रीनगर के इस मुख्य इलाके में अक्सर भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं, हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में सुनिए, यहां पर आखिर इतने ज्यादा प्रदर्शन होते क्यों हैं।
तंग गलियां, घनी आबादी, दुकानों की रेल पेल, भारत विरोधी प्रदर्शनों में पेश पेश रहने वाला इलाका, अलगावादी राजनीति का केंद्र, यह तारुफ है भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर के डाउनटाउन के नवहट्टा इलाके का। नवहट्टा इलाके का सबसे ज्यादा महत्व यहाँ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से है। बीते कुछ वर्षों से कश्मीर के लोगों के लिए नवहट्टा की जामा मस्जिद धार्मिक और अलगावाद राजनीति का केंद्र रही है। कश्मीर में कुछ लोग तो नवहट्टा को कश्मीर का गजा भी कहते हैं। जुम्मा नमाज की अदायगी के साथ ही यहाँ युवाओं की एक फौज जामा मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी और प्रदर्शनों के लिए तैयार नजर आती है। जामा मस्जिद के बाहर युवाओं के खड़े होने की देर होती है तो पुलिस और सुरक्षा बल उस जगह पर या तो पहले ही अपना मोर्चा संभाले होते हैं या फिर बाद में उस जगह पर पहुंचकर इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से आमना सामना होता है। एक तरफ युवा हाथों में पत्थर लिए होते हैं तो दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा बल हाथों में बंदूक, टायर गैस, पैलेट गन या फिर पावर शेल्स से लैस होते हैं। एक तरफ पत्थर बरसते हैं तो दूसरी तरफ टायर गैस शेलिंग होती है। जामा मस्जिद के बाहर यह सिलसिला बीते कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ नवहट्टा चौक में अपनी दुकान चलाने वाले एक दुकानदार का कहना था कि यहाँ हर जुम्मा को प्रदर्शन होते हैं।
यहाँ तो ये रोज एहतजाज चल रहे हैं, जुम्मा जो हाँ हर जुम्मा चाहे एहतजाज दे या न दे, मार एहतजाज हो रहा है। जबकि फोर्सेस इधर हुसैन मीरवाइज ने इनको कहा था कि इधर सिक्योरिटी नहीं लगनी चाहिए, इसके पहले जो जुम्मा था तो उस टाइम एहतजाज बहुत हो गया क्योंकि जुम्मा के दिन फोर्स ने बेतहाशा शेलिंग की और जामिया में भी शेलिंग बहुत की।
फोटो पत्रकारों के लिए नवहट्टा में काम करना कोई आसान काम नहीं है। बीते 18 वर्षों से फोटो पत्रकारिता करने वाले बिलाल बहादुर कहते हैं कि कश्मीर में तो हर जगह पत्थरबाजी होती है लेकिन नवहट्टा की पत्थरबाजी सबसे खतरनाक होती है। उनका कहना था,
मुझे लग रहा है कि स्टोन पेल्टिंग पूरी वैली में हो रही है मगर जितनी खतरनाक स्टोन पेल्टिंग नवहट्टा में हो रही है जामिया मस्जिद एरिया में, मुझे लग रहा है कि उतनी खतरनाक स्टोन पेल्टिंग कहीं नहीं हो रही है।
फिलहाल कहते हैं कि पहले पहले तो नवहट्टा में जुम्मा के दिन ही पत्थरबाजी होती थी लेकिन अब तो किसी भी दिन होती है। बीती शुक्रवार को यहाँ नवहट्टा चौक में सीआरपीएफ की एक गाड़ी ने 3 लोगों को कुचला था जिनमें से एक युवक कैसर अहमद की मौत हो गई। एक पत्थरबाज का कहना था कि मैंने आज तक कई बार नवहट्टा में जामा मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की है। वो कहते हैं कि पुलिस हम पर बिला वजह जुल्म करती है। एक पत्थरबाज,
तो आप उस स्टोन पेल्टिंग में कभी हिस्सा लेने गए आज तक?
बहुत बार गया हूँ।
क्यों करते हैं आप स्टोन पेल्टिंग?
देखिए, मैं एक बार हालात खराब थी यहाँ पे 2008 में, मैं घर से निकला, बाहर पथराव चल रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे पकड़ा गया।
अलगावादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक ने हाल ही में जामा मस्जिद में जुम्मा खुतबे के दौरान बताया था कि बीते 90 वर्षों से जामा मस्जिद का मेहराब वो मिंबर कश्मीर की तहरीक की आवाज बनकर सामने आया है। मीरवाइज,
आवाज बनो जामिया मस्जिद मिंबरो मेहराब।
मीरवाइज बता रहे थे कि कश्मीर की ये जामा मस्जिद बीते 90 वर्षों से कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की आवाज़ बनकर सामने आई है। कश्मीर घाटी में जब भी किसी गड़बड़ी की आशंका होती है तो सबसे पहले डाउनटाउन में सरकार प्रतिबंध लगा देती है और नवहट्टा इस प्रतिबंध की फहरिस्त में एक नंबर पर होता है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने ये दिन मनाने का फैसला किया था ताकि पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाई जा सके। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूर्व चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार से बात की और पूछा कि क्या भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं।
देखिए, कदम तो काफी उठाए गए हैं हर तरफ से ही, चाहे वो सरकार के थे, चाहे कोर्टों से हैं, चाहे लोकल अथॉरिटीज से हैं, चाहे रेगुलेटरी अथॉरिटीज से हैं। लेकिन जो मेरा विचार है वो ये है कि हमारा एक जैसे होता है ना, संगठित रूप से जो है ना कि भाई हर तरह के हमारी सोसाइटी इन्वॉल्व हो, लोग इन्वॉल्व हों, बच्चे इन्वॉल्व हों और गवर्नमेंट हो, सारे लोकल अथॉरिटीज एवरीबॉडी व्हाट आई थिंक इज दैट वी नीड टू मेक अ कलेक्टिव एफर्ट टू अचीव एनवायरमेंटल गोल दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड देयर वी आर लैकिंग डेफिनेटली.
क्या आपको लगता है एनजीटी जो है जितने सशक्त माध्यम की आज जरूरत है आज के दौर में उतना सशक्त है अपने फैसलों को लागू करवा पाता है?
हाँ, एनजीटी के मेरे ख्याल से तो ऑर्डर हमेशा माने गए हैं और थोड़ा एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम होती है, वो सारे संसार का ही हाल ऐसा है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रिब्यूनल के ऑर्डर काफी हद तक पूर्ण रूप से उनको इम्प्लीमेंट किया गया मेरे ख्याल से तो.
जी, आपके जो कई बड़े फैसले हैं चर्चित उनमें से कई तो पूरी तरीके से लागू हुए, लेकिन हाल फिलहाल का एक फैसला जो आपने यमुना में श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम को लेकर दिया था वो कहीं जाके फंस गया, जनता में संदेश गया कि एनजीटी ने पूरी कोशिश की, कार्यक्रम नहीं रुका और उसके बाद जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया उसका हर्जाना भी नहीं भरा. तो इससे एक संकेत सर ये जरूर मिला कि एनजीटी इतना ताकतवर होकर भी कहीं ना कहीं कमजोर है.
ये तो खैर कहना ठीक नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो ऑर्डर पूरे तरह से इम्प्लीमेंट होते ही हैं, बाकी सरकार ने भी बीच में करना होता है. तो आई टोल्ड यू इट्स अ जॉइंट एफर्ट, एवरीबॉडी शुड गेट कॉशियस, वेदर सिटीजंस, वेदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वेदर एनीबॉडी.
आज का जो दौर है खास करके जो तकनीक का हस्तक्षेप बड़ा है, पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बड़े हैं, तरह तरह की चीजें आ गई हैं, उसमें जो जहां हम खड़े हैं पर्यावरण से को बचाने के लिए उससे आगे हमको बढ़ना होगा. और इसमें मैं बात कर रहा हूं जो हमारे प्राधिकरण हैं उनकी और मजबूत संस्थान खड़े करने होंगे. क्या आपको ऐसा महसूस होता है?
हाँ, देखिए, हर रेगुलेटरी अथॉरिटी, हर बोर्ड को, हर सरकार को, हर सिटीजनरी ग्रुप को, सोसाइटीज को, definitely they have to take a stronger action and stronger follow-ups. ये तो बात ठीक है कि थोड़ा हमारा निश्चय जरा और स्थिर होना चाहिए.
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का. नवीन, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
आदर्श, बिल्कुल, आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में भी पर्यावरण दिवस से जुड़ी हुई कुछ खबरों को जगह दी गई है क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है और हम रिपोर्ट भी सुन रहे थे. दैनिक जागरण मेरे हाथ में है और एक छोटी सी फोटो गंगा की उन्होंने छापी, गंगा नदी की, और उसमें लिखा है कि गंगा आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है. स्थिति यह है कि काशी में गंगा रेत के टीले में तब्दील होती जा रही है, इस तस्वीर के साथ लिखा है. इसके अलावा कई अखबारों में चीनी मिलों के लिए सरकार की तरफ से 8,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रकाशित करने के साथ एक सवाल भी उठाया है कि कहीं यह कैराना लोकसभा के उपचुनाव में मिली हार का असर तो नहीं है. नीट परीक्षा के परिणाम कल घोषित हुए थे और इससे जुड़ी हुई खबरें भी कई अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं. नवभारत टाइम्स ने सुर्खी लगाई है कि बिहार की कल्पना बनी नीट की टॉपर, तो दिल्ली के दो छात्र भी टॉप 5 में शामिल हैं. परीक्षाओं से जुड़ी हुई एक और खबर कई अखबारों में है और यह खबर है UPSC की परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें एक छात्र अपने परीक्षा केंद्र में महज 4 मिनट की देरी से पहुंचा तो उसे प्रवेश नहीं मिला और इसी बात से परेशान होकर उस छात्र ने आत्महत्या कर ली. और उस छात्र का यह अंतिम प्रयास था UPSC का, तो एक दुखद खबर है. एक छात्र की उम्मीदें खत्म हुई और उसने आत्महत्या कर ली. एक और खबर की तरफ नजर दौड़ाएं जो हिंदुस्तान अखबार में छपी है. इसमें लिखा गया है कि ATM में तय सीमा से ज्यादा निकासी करने पर अब GST लगेगा. अखबार लिखता है कि सीमा शुल्क बोर्ड व कस्टम ने सोमवार को यह कहा कि ग्राहकों को हर महीने बैंकों द्वारा 3 से 5 बार ATM से निकासी मुफ्त दी जाती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा वो निकासी करते हैं तो उसमें अब GST लगाया जाएगा. झारखंड से एक खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि 58 वर्षीय एक महिला के पास राशन कार्ड नहीं था और जिस वजह से उसे राशन नहीं मिला और 3 दिन से वह भूखी थी और भूख के कारण उस महिला की मृत्यु हो गई. जब अधिकारियों की टीम उस महिला के घर पहुंची तो उन्हें बिल्कुल खाना नहीं मिला और उन्होंने अब जाँच के आदेश दे दिए हैं. तो ये तमाम खबरें आज के अखबारों में छाई हुई हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया नवीन. पाकिस्तान के थार रेगिस्तान में है मट्ठी शहर. यहाँ की दरगाहों का रख रखाव स्थानीय हिंदू करते हैं, यही नहीं वो रमज़ान के महीने में यहाँ इफ्तार का भी इंतज़ाम करते हैं. सुनिए BBC संवाददाता रियाज सुहेल की रिपोर्ट दिलनवाज पाशा से.
पाकिस्तान के थार रेगिस्तान के मट्ठी शहर के बीचों बीच स्थित दरगाह काशिम साह में आग की लपटों पर एक बड़ी देग रखी है जिसमें सैकड़ों लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाई जा रही है. रमजान के महीने में इफ्तारी का इंतजाम यहां के हिंदू युवा कर रहे हैं. मोहनलाल मलाही बचपन से ही दरगाह काशिम साह के मानने वाले हैं. अपने चाचा की मौत के बाद अब वो इस मजार की देखभाल करते हैं. मोहनलाल मलाही बचपन से ही रोजे भी रख रहे हैं. वो कहते हैं,
हमारे तो जो माइटू ने एक मोहब्बत सिखाई थी, ये तेरा मामा है, ये चाचा है, ये भाई है, ये नहीं बोला कि ये मुसलमान है या यमेगवाड़ है, सिख है, ईसाई है, ये कौन है। और हमारे यहाँ जो है ना आज भी यही है, बस हिंदू मुस्लिम हम सारे जो है एक भाइयों की तरह रहते हैं।
मलाही बिरादरी के लोग पुराने जमाने में अपने कुओं से मशकों में पानी भरकर रेगिस्तान में बसे मट्ठी शहर के लोगों की प्यास बुझाने का काम करते थे। जब शहर बढ़ा तो उनके कुएं शहर के बीच में आ गए और संपत्तियों के दाम बढ़ने से उनकी माली हालत भी ठीक हो गई। इस समुदाय के लोग दरगाह काशिम शाह के अनुयायी हैं। दरगाह पर रमजान के महीने में हिंदू और मुसलमान फल और अन्य खाने पीने की चीजें भेजते हैं, जिनसे अफतारी तैयार की जाती है। यहाँ आए एक हिंदू अनुयायी माधो मलाही कहते हैं,
बाकी हम मुस्लिम भी है, हमारे भाई हैं सारे, उनको बिठा के जिनके रोजे हैं उनको रोजे खिलाते हैं, तो मुर्शिद है तो वो भी हमारा मुस्लिम है, उनको मानते हैं, तो हमारी मुस्लिम बिरादरी है तो वो भी हम मिलकर साथ बैठकर।
पारंपरिक साड़ी और चोली घाघरा पहनी महिलाएं भी मजार के पास आती हैं और अफ्तार के समय तक यहाँ मौजूद रहती हैं। सिर्फ दरगाह कासिम शाह ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद एक दर्जन से अधिक मुस्लिम बुजुर्गों की दरगाहों का इंतजाम हिंदुओं के हाथों में ही है। यहाँ के मुसलमान भी हिंदुओं की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती है। कुछ कट्टरपंथियों ने गाय की कुर्बानी की कोशिश की थी, जिसे मुसलमानों ने मिलकर नाकाम कर दिया। यहाँ आज भी गाय का गोश्त नहीं बेचा जाता। सिंध के थार रेगिस्तान में बसा यह मट्ठी शहर प्यार मोहब्बत और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गया है। थार के हिंदू और मुसलमान ईद की और मुहर्रम का मातम मिलकर मनाते हैं। उसी तरह दिवाली और होली पर भी यहाँ के मुसलमान हिंदुओं की खुशी में शामिल होते हैं।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खेल की शुरुआत करेंगे फ्रेंच ओपन से, यानी कि टेनिस के मैदान से। और टेनिस के मैदान पर आज भारत के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और फ्रांस के खिलाड़ी एडुआ होसे वासला की जोड़ी, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी अलेक्जेंडर पेया और क्रोएशिया के खिलाड़ी निकोला मैक्टिक की जोड़ी के साथ भिड़ेंगे। क्योंकि ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होने वाला है, तो ये बेहद अहम मुकाबला होने वाला है दोनों ही खेमों के लिए। तो वहीं मेन सिंगल्स की बात करें तो आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला है मार्को चिंचिनाटो से और डोमिनिक थीम भिड़ेंगे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से। तो वहीं विमेन सिंगल्स में आपको क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में खेलती नजर आएंगी स्लोन स्टीफेंस दरिया कसतकीना के साथ। तो वहीं फुटबॉल की अगर बात करें तो ब्राजील ने रूस में 14 जून से शुरू होने वाले फीफा विश्व कप से पहले रविवार को खेले गए दोस्ताना मैच में क्रोएशिया को 2-0 से मात दी। रिपोर्ट के अनुसार पाव में लगी चोट के बाद वापसी कर रहे नेमार ने 69वें मिनट में आकर्षक गोल किया। नेमार की शानदार वापसी से ब्राजील टीम को काफी कॉन्फिडेंस मिला है, जो इन दिनों विश्व कप की तैयारियों में व्यस्त है। तो वहीं क्रिकेट की बात करें तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच देहरादून में चल रहे T20 मुकाबले में आज दूसरा मुकाबला है और ये मुकाबला 8 बजे शुरू होगा। आपको बता दें 3 जून को हुए पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 45 रनों से हरा दिया था।
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। ग्वाटेमाला में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अभी तक कम से कम 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। देश के आपदा विभाग के अनुसार बचाव कर्मियों ने नजदीकी गांव से कई शव बरामद किए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप और इससे जुड़े अन्य मामलों की जाँच को लेकर उन्हें खुद को क्षमादान देने का संपूर्ण अधिकार है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान आज संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी को इस बारे में सूचित करेगा कि उसने अपनी यूरेनियम क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने घोषणा की है कि वे उस सॉफ्टवेयर को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए फेसबुक खुद ब खुद अपने वेब यूजर्स को ट्रैक कर लेता है। खेल की खबरों में फुटबॉल के एक मैच में कल भारत ने कीनिया को 3-0 से हरा दिया। यह भारतीय कप्तान सुनील छेत्री का 100वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। जॉर्डन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे शहर में रैलियां जारी रखेंगे। जॉर्डन में प्रदर्शनकारी सामानों की कीमतें बढ़ने और टैक्स की दरों में हुई वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।